हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अपनों के दिए जख्मों की भी अपनी ही खासियत है। ये ना देखने वालों को दिखते हैं, ना वक्त के साथ मिटते हैं। पल पल नासूर बनकर सीने में चुभते हैं और अपनों के दिए दर्द की कहानी बुनते हैं। धृति, इधर बैठो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। दोपहर का वक्त हो चला था। हल्दी के बाद सब फ्रेश होकर खाना खाने के बाद आराम करने गए थे और ड्राइविंग रूम में अब शाम को होने वाली मेहंदी की रस्म की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। अर्णव उस कमरे में आया था जहां धृति ठहरी हुई थी, ताकि उसे आराम से बैठकर बात कर सके। अर्णव ने उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके सामने बैठ गया। धृति ने उसके हाथ से अपनी हथेलियों को छुड़ा लिया और निगाहें उसकी ओर उठाते हुए सख्त भावहीन लहजे में बोली, अगर आप यहाँ मम्मी को लेकर मुझसे कोई बात करने आए हैं तो वापस चले जाइए, क्योंकि मैं ना तो उनके बारे में कोई बात करना चाहती हूँ और ना ही उनके जिक्र से अपना मूड खराब करना चाहती हूँ। बहुत खास है आज का दिन मेरे लिए, जिसे मैं उनके कारण बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहती। उनके नहीं, तुम्हारे बारे में बात करने आया हूँ, कर सकता हूँ ना? अर्णव ने शांत और संयमित स्वर में कहा। धृति ने हामी भर दी। अर्णव ने गहरी सांस छोड़ी और गंभीरता से कहना शुरू किया, धृति, तुम्हें याद है ये बात? मुझसे खुद तुमने कही थी कि मुझसे नाराज होकर तकलीफ तुम्हें भी हुई थी, सज़ा मेरे साथ साथ तुम्हें भी मिली थी। अगर मैं यहाँ तुम्हारे बिना दुखी था तो मुझसे दूर जाकर खुश तुम भी नहीं थी। माफ़ नहीं किया था तुमने मुझे पूरी तरह से, सब भूली भी नहीं थी, पर जो बीत गया उसे भुलाकर मेरे साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। चाहती थी कि मैं तुम्हें उन सबसे बाहर निकालूँ, अपने प्यार के सहारे तुम्हारे दिल में बसी उन दर्द भरी कड़वी यादों को मिटा दूँ, जो तकलीफ़ मैंने तुम्हें जाने अनजाने दी उसकी दवा बन जाऊँ। पर अब तो मैं वो बुरा वक्त भुलाकर आपके साथ खुश हूँ, फिर अब बीती बातें क्यों दोहरा रहे हैं? धृति ने हामी भरी और उलझन भरी निगाहों से उसे देखने लगी। अर्णव ने उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया। धृति के चेहरे पर सवालिया धावों भर आए। धृति, तुम अपनी मम्मी से नाराज हो, उन्हें माफ़ नहीं करना चाहती, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ये तुम्हारा अपना फ़ैसला है जिसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर उनसे इस नाराज़गी में तुम उनके साथ साथ खुद को भी तकलीफ़ पहुँचा रही हो। अगर वो दुखी है तो तुम भी दुखी हो, और ये नहीं चाहता मैं। अगर तुम उन्हें माफ़ करके बीती बातें भुलाकर उनसे अपना रिश्ता सुधार सको तो अच्छी बात है, पर अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो उन्हें खुद को इफ़ेक्ट भी मत करने दो, क्योंकि ऐसा करके तुम बेवजह खुद को तकलीफ़ पहुँचा रही हो। मैं शायद उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, और जो बातें अभी आपने मुझसे कही उसके बदले आपसे बस एक ही बात कहूँगी, मम्मी ने जो मेरे साथ व्यवहार किया उसे ना कभी मैं भुला सकती हूँ, ना ही इस तकलीफ़ से मुक्ति पा सकती हूँ। और पता है मैं उन्हें क्यों माफ़ नहीं कर सकती? क्योंकि वो माँ है मेरी, उन्होंने जन्म दिया है मुझे, फिर भी वो मुझे कभी समझ ही नहीं सकी। उन्होंने कभी एक पल के लिए भी मुझे प्यार से अपने सीने से नहीं लगाया, कभी मुझ पर विश्वास तक नहीं किया। उनके लिए उनकी बस एक ही बेटी थी, दी, जो उनकी लाडली थी। उन पर उन्होंने अपना सारा प्यार और सारी ममता लुटाई, जिन पर उन्होंने आँख मूंद कर विश्वास किया। मेरी माँ होते हुए वो कभी मेरी आंखों में छलकती मेरी सच्चाई नहीं पढ़ सकी, कभी उन्हें मेरे आंसू, मेरे दर्द, मेरी कोशिशें नहीं नज़र आईं। मैंने अपना सारा बचपन और आधी जवानी बस उनकी नाराज़गी दूर करके उनका प्यार पाने की कोशिशों में बर्बाद कर दी। आखिर क्या गलती थी मेरी? ऐसा कौन सा गुनाह किया था मैंने, इसकी इतनी बड़ी सज़ा मिली मुझे? आप अनजान थे मेरे लिए, जब आपसे रिश्ता जुड़ा आपने मेरे साथ जो भी गलत किया वो गलत फहमी में किया, क्योंकि आप नहीं जानते थे मुझे, और जब आपने मुझे समझा तो विश्वास किया मुझ पर। अगर उस दिन आप मेरी माँ के सामने मेरे पापा की मौत और हमारी शादी का सच नहीं लाए होते तो वो आज भी नफरत ही करती मुझसे, और मैं आज भी उनके प्यार के लिए तरस ही रही होती। उन्होंने मेरा पूरा बचपन तबाह कर दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या होता अगर आपको सच नहीं पता चलता? मैं तो आपकी नफ़रत की भेंट चढ़ जाती ना, और अगर आप मुझे मार भी देते तब भी वो एक बार मुझे देखने तक नहीं आती, इतनी नफ़रत करती थी वो मुझसे। और वो भी क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से अपने पापा की मौत की जिम्मेदार थी मैं। अगर सच में मुझे बचाते हुए पापा को कुछ हुआ होता तो क्या मैंने जानकर मुझे मारा था, जो इतनी नफरत करने लगी वो मुझसे? बच्ची थी मैं, उन्होंने ये तक नहीं देखा? जानती थी वो कि मैं पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनसे गहरा लगाव है मुझे। उसके बावजूद उन्होंने मुझे मेरे पापा को आखिरी बार देखने तक नहीं दिया, मुझे उन्हें छूने तक नहीं दिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, उन्हें अपनी सच्चाई का विश्वास दिलाती रही कि मैंने पापा को नहीं मारा है, मैं नहीं हूं उनकी मौत की जिम्मेदार, पर उन्होंने कभी मेरा विश्वास नहीं किया, मुझे मेरे ही पापा का दुश्मन बना दिया, जैसे मैंने जानबूझकर मार दिया हो उन्हें।
मैंने भी अपने पापा को खोया था। मैं भी टूट गई थी, दर्द में थी, पर मुझे ही उनका कातिल बना दिया गया। अपनी आधी जिंदगी मैंने उनकी और लोगों की नफरत सहकर, उनके ताने सुनकर गुजारी है। जब मेरी अपनी माँ मुझे मेरे पापा का कातिल समझती थी तो किसी और से क्या शिकायत करती मैं, जब उन्हें ही मेरी भावनाओं, मेरे दर्द, मेरे सपनों की कोई परवाह नहीं थी तो किसी और से क्या उम्मीद रखती मैं। अब आप बताइए मुझे कि कैसे भूल जाऊं मैं वो सब, कैसे माफ कर दूं उन्हें। मुझसे नहीं होगा ये, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पुराना वक्त एक बार फिर याद आया था। वो दर्द जो कभी उसने सहा था, आज आंखों में नमी बनकर छलक आया था। चेहरे पर दर्द, पीड़ा, वेदना, दुख, नाराजगी जैसे कई भाव मौजूद थे। उसका दिल तड़प रहा था, चीख चीख कर रोना चाहती थी वो। अर्नव चाह कर भी उसके दर्द का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। किसी ने सही ही कहा है, जिस पर बीतती है वही जानता है। अर्नव ने धृति को अपने सीने से लगाकर उसे संभालना चाहा, पर धृति ने उसे रोक दिया। अपने आंसुओं को अपनी हथेलियों से पोंछते हुए उसने आंसुओं से भीगी पलकें उठाते हुए उसे देखा और रुंधे स्वर में बोली, अगर आप मुझे पहले से जानते होते, उसके बाद भी मुझ पर विश्वास नहीं करते, और उसके बाद आपने मेरे साथ वो सब किया होता ना, तो मैं आपको भी कभी माफ नहीं करती, कभी लौटकर आपकी जिंदगी में वापस नहीं आती, आपसे कभी मोहब्बत भी ना करती, क्योंकि मेरे लिए हर चीज और रिश्ते से ऊपर विश्वास आता है। आप खुद को खुशनसीब समझिए कि आपके लिए मैं अनजान थी। हमारे बीच पहले से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था, वरना जैसे आज अपनी माँ को मैंने अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर उनके लिए अपने दिल के दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर लिया है, वैसे ही आपके साथ भी होता। इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा कि मोहब्बत करते हैं, रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो मुझ पर से कभी आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। जिस दिन आपने दोबारा मुझ पर शक किया, अपने व्यवहार या बातों ने मेरे दिल और भावनाओं को आहत किया, आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। धृति शायद उसे पहले से ही आगाह कर रही थी, जाने ये उसकी चेतावनी थी या धमकी, पर लग वो बेहद गंभीर रही थी। अर्नव ने ध्यान से उसकी बुरी बात सुनी, फिर उसकी बाह पकड़कर उसे खींचकर अपनी बाहों में भरते हुए मुस्कुरा दिया। समझ गया, और तुम्हारी ये धमकी मैं हमेशा याद रखूंगा, अब इधर आओ मेरे पास। धृति ने उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और अर्नव बड़े ही प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। आज जितना रोना है मेरे सामने रो लो, अपना सारा दर्द बाहर निकाल लो, दोबारा कभी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देखना चाहता। अर्नव की ये बात सुनकर धृति रोते हुए भी मुस्कुरा दी। उसने अर्नव के सीने से अपना सर बाहर निकाला और अपनी तितली जैसी पलकों को फड़फड़ाते हुए उसे देखने लगी। मैं रोते हुए कैसी लगती हूँ?
बहुत ही बेकार, देखो कैसे पूरा चेहरा लाल हो गया है, आंखें भी अजीब सी सूजी सूजी सी लगने लगी हैं, और ये तुम्हारी नाक तो बिल्कुल टमाटर जैसे लगने लगी है। अर्नव ने मुंह बिगाड़ते हुए उसकी बुराई की और अंत में उसकी नाक को हल्के से पकड़ते हुए खींच दिया। धृति ने नाराजगी से आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा और अपनी छोटी सी नाक को अपनी हथेली से सहलाने लगी। अर्नव उसे देखकर हल्के से हंस दिया और उसके सर को चूमते हुए उस पर अपनी बाहों के घेरे को और तंग कर दिया। अरे छोड़िए मुझे, सांस नहीं आ रही मुझे, मर जाऊंगी मैं। धृति उसकी बाहों के घेरे से आज़ाद होने को छटपटाते हुए उसे सीने पर मुक्के मारते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। कुछ देर यूं ही उसे तंग करने के बाद अर्नव ने उसे छोड़ दिया। नौटंकी, इतनी तेज पकड़ा भी नहीं था, अर्नव ने चिरते हुए मुंह बनाया, तो बदले में धृति ने भी नाक से कोड़ते हुए मुंह ऐंख लिया। धृति, अगर उनके वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो मैं वापस भेज दूं उन्हें, कुछ देर बाद अर्नव ने सवाल किया और निगाहें धृति के चेहरे पर चा ठहरी। उसकी ये बात सुनकर धृति के चेहरे के भाव कुछ बिगड़े, पर जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। नहीं, अब सबको पता चल गया कि मेरी माँ भी है, अगर ऐसे शादी की रस्मों के बीच से वो चली गई तो सबको पता चल जाएगा कि उनके और मेरे रिश्ते ठीक नहीं, और इतने लोगों के बीच बात फैलेगी, आपके परिवार पर बात आएगी, घर का माहौल बिगड़ेगा और इन सब का असर हमारी शादी पर पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। शादी तक की बात है, रहने दीजिए उन्हें यहीं, जन्म दिया है उन्होंने मुझे, तो मेरा कन्यादान करके कमा लेने दीजिए उन्हें पुण्य, पर इसके बाद उन्हें दोबारा यहाँ मत लाइएगा। नफरत नहीं करती मैं उनसे, उनके लिए कुछ बुरा भी नहीं चाहती, अपनी बाकी की ज़िंदगी वो आराम से जिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं उनकी बेटी होने का फ़र्ज़ भी निभा दूंगी, पर अब उन्हें अपने दिल में माँ की जगह, इज्जत और वो दर्जा दोबारा कभी नहीं दे सकूंगी, और ना ही मेरी ज़िंदगी में अब उनके लिए कोई जगह है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस फ़ैसले का मान रखेंगे। बिल्कुल, अब जो तुम चाहोगी वही होगा, तुम चाहती हो कि शादी तक वो यहीं रहें तो ठीक है, पर याद रहे कि उनकी वजह से मुझे दोबारा तुम्हारे चेहरे पर उदासी या आंखों में नमी नहीं नजर आनी चाहिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं दोबारा शादी के लिए तैयार हुआ हूँ, तो खुश रहो और इन लम्हों को खुलकर जियो। धृति ने हामी भरी और मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। अर्नव ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए अपनी आंखों को मूंद लिया, चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे, शायद कुछ सोच रहा था वो। टू बी कंटिन्यूड।